सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 411 करोड़ रुपए की 480 परियोजनाओं को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी विधायक राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर सहित पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। राजस्व मंत्री आतिशी ने यमुना नदी में बाढ़ के लिए तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 411 करोड़ रुपए लागत की 480 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। विकास मंत्री गोपाल राय ने ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी दी। इससे दिल्ली के गांव के विकास कार्यों को गति मिलेगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत गांव में सड़क, नाली, जल निकायों, सामुदायिक केंद्र, पार्क और खेल मैदान आदि से जुड़े विकास कार्य किए जाएंगे। श्री गोपाल राय ने सभी अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार ने इस साल दिल्ली के गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद और छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर सहित पार्टी के कई अन्य नेता आज भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में दोनों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर श्री राजकुमार आनंद ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
हजारों करोड़ रुपया दलित कल्याण फंड में से डाइवर्ट कर दिया गया, घोटाला कर दिया गया। आज दिल्ली का हर दलित पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे हिस्से के वो हजारों करोड़ रुपए कहाँ हैं। आरक्षण जैसी बुनियादी सुविधा पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई ध्यान नहीं है और एक भी नौकरी किसी दलित युवा के हाथ नहीं लगी। आज दिल्ली का हर दलित मुद्दा पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल हमारे हिस्से की नौकरी क्यों खा गए।
उधर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि राजकुमार आनंद पर प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही थी और वे दबाव में थे।
राजकुमार आनंद जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज है और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। दलितों के नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। न्यायालय ने इस मामले में तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने संबंधी निर्देश के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय की पीठ ने यह भी आदेश दिया कि आवेदन लंबित रहने के दौरान अगर महिला को तलाक दिया जाता है तो वे विवाह अधिकार संरक्षण संबंधी 2019 के अधिनियम का सहारा ले सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ी राहत है और ये मुस्लिम महिलाओं को उनका उचित सम्मान देने का फैसला है। 1985 के शाह बानो मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई पार्टी ने विभिन्न तरीकों से संविधान पर हमला किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटकर संविधान को कमजोर कर दिया था।
आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था उसको समाप्त किया है और दूसरा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है और तीसरा इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है।
वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के बैंकों से पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा और जन समर्थ पोर्टल जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत अधिक ऋण प्रदान करने का आग्रह किया है। इसका उद्देश्य कुशल कारीगरों और रेहड़ी पटरी वालों को अधिक रोजगार प्रदान करना है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने निर्धन कामगारों के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाओं की प्रगति पर कल निजी क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में डेंगू का प्रसार रोकने की तैयारियों का आकलन करने के लिए आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने कहा कि मंत्रालय डेंगू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है और राज्यों के साथ मिलकर काम भी कर रहा है।
आने वाले समय में डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय आगे कार्य कर रहा है, मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि हम डेंगू के प्रिवेंशन के लिए विशेष योजना चला करके सभी स्टेट्स के साथ बातचीत करके प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इस पर हमको जोर देने की आवश्यकता है। समय समय पर विभाग ने एडवाइजरीज दी है, समय रहते ट्रेनिंग भी कराई है सबकी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि मंत्रालय 2400 घंटे डेंगू हेल्पलाइन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से अगले 4-5 दिन में डेंगू हेल्पलाइन शुरू करने को कहा गया है। उधर दिल्ली में बारिश और जलजमाव के दौरान मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नगर निगम की महापौर शैली ओबराय ने जन स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक वार्ड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, अनाधिकृत कॉलोनियों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और हॉटस्पॉट पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली के राजस्व मंत्री आतिशी ने आज यमुना नदी पर स्थित पुराना लोहा पुल और यमुना बाजार इलाके में बाढ़ को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। राजस्व विभाग और बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के उच्चाधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ को लेकर विभागों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाढ़ की स्थिति में मोटर बोट, गोताखोर और मेडिकल टीमें तत्पर रहेंगी। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाने की तैयारियां भी की गई हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पिछले साल यमुना का जलस्तर 208 मीटर से ऊपर गया था और इस कारण यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी। इसे देखते हुए इस बार काफी पहले से ही बाढ़ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे हाई वाटर लेवल गया था, अभी 202.6 मीटर से है, तो अभी खतरे के निशान से हम बहुत नीचे हैं। दिल्ली सरकार बिल्कुल तैनात है, तैयार है कि अगर शॉर्ट नोटिस पर भी हमें लो लाइंग एरिया के लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसके लिए हम पूरी तैयारी।
उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कटाव के कारण अपनी कृषि भूमि खोने वाले किसानों को पट्टे पर भूमि देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया तथा बचाव और राहत अभियान की समीक्षा की। श्री योगी ने कहा कि नदियां उथली हो गई हैं और अब समय आ गया है कि नदियों के प्रवाह को सुधारने के उपाय किए जाएं। उत्तराखंड में चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया। एक रिपोर्ट।
चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंसी सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद यातायात अवरुद्ध हो गया है। इससे पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कल सुबह जोशीमठ के पास भूस्खलन से अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद से बद्रीनाथ यात्रा अवरुद्ध है। पुलिस और प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आने वाले दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बांगर मऊ के निकट आज सुबह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक दुग्ध टैंकर के डबल डेकर से बस से टकराने से 18 लोगों की मृत्यु हो गई और 19 घायल हो गए। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने बताया कि घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि 5 घायल यात्रियों को बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेज दिया गया है।
घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है, 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जो मृतक और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है, नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। मृतकों के निकटतम परिजन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घायलों के उचित उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट news.iir.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार की शह पर बिजली कंपनियां पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के रूप में दिल्ली की जनता से अतिरिक्त शुल्क वसूल रही हैं। इसके अलावा मीटर भार के शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है और अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार और विद्युत वितरण कंपनियों के बीच साठगांठ से पीपीएसई के शुल्क को 8.75% से बढ़ाकर 43.79% कर दिया गया है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में मंत्री आतिशी जवाब दें। उधर आतिशी ने कहा कि भाजपा की जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां बिजली महंगी है और भाजपा बिजली का समाधान नहीं कर पा रही है। दिल्ली कथित आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा आज दाखिल की गई चार्जशीट पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि इस मामले में ईडी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीते दिनों कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह साबित किया था कि ईडी बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ईडी की पूरक चार्जशीट में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 39 करोड़ रुपए कैसे वितरित किए गए थे। इसमें यह भी बताया गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कितने समन जारी किए गए थे और उन्होंने जांच में कैसे सहयोग नहीं किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने के लिए वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरूआत की गई है। इस पहल के तहत यात्री अब दिल्ली मेट्रो रेल के QR कोड आधारित टिकट को भारतीय रेलवे IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। इस सुविधा का पूर्ण संस्करण जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा पाठ्य पुस्तकों में बदलाव केवल कक्षा 3 और 6 के लिए किया गया है, अन्य कक्षाओं के लिए नहीं। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा 3 और 6 को छोड़कर अन्य कक्षाओं के लिए उसी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग जारी रखें जैसा कि उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में किया था। उपभोक्ता मामले विभाग के लगातार प्रयासों से उड़द की कीमतों में नरमी आने लगी है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार की सक्रिय उपायों से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हुआ है, साथ ही कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है। मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों के परिणाम स्वरूप इंदौर और दिल्ली के बाजारों में उड़द की कीमतों में गिरावट देखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में डूरंड कप टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसमें डूरंड कप, प्रेसिडेंट कप और शिमला ट्रॉफी शामिल है। राष्ट्रपति ने कहा कि फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। उन्होंने डूरंड कप टूर्नामेंट के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में आज हल्की से तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 25.4 मिलीमीटर बारिश पालम इलाके में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा। फरीदाबाद में हरियाणा उदय कार्यक्रम के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिला वन विभाग विशेष रूप से पौधारोपण करवा रहा है। फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मान किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए 411 करोड़ रुपए की 480 परियोजनाओं को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी विधायक राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर सहित पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हुए। राजस्व मंत्री आतिशी ने यमुना नदी में बाढ़ के लिए तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में डूरंड कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।